ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. சங்கம் யுக் பர் பாபா நே ஹம் பச்சோ கோ பஹத் ஸ்மிருதியாம் திலாயி ஹேன். ஆர் ஏக் ஜோ அவினாஷி ஸ்மிருதி ஹேன், ஜோ சப்ஸே பஹலி ஸ்மிருதி திலாயி பாபா நே, வோ கௌன் சி ஹேன், வோ கௌன் சி ஹேன், மே கௌன் ஹூ, மே ஆத்மா ஹூ. தோ யே ஆத்மிக் ஸ்மிருதி கா திலக் இஸ் அலௌகிக் ஜனம் ஹோதே ஹி, பிராமண் ஜனம் ஹோதே ஹி பாபா நே ஹமாரே மஸ்தக் பர் லகாயா. ஆர் பாபா நே கஹா கி சதா ஹி யே திலக் ஆப்கே மஸ்தக் பர் லகா ரஹே. ஜெஸே கோய் மந்திர மே ஜாதே ஹே தோ திலக் லகாதே ஹே, யா ஹமாரி மாதாயே பஹனே வைசே ஹி பிந்தி லகாதி ஹே. தோ கையோ கி ஆதத் ஹோதி ஹே வோ திலக் ஜோ லகாதே ஹே யா பிந்தி பி லகாதே ஹே, தோ கபி ஹாத் சலா ஜாதா ஹே தோ வோ பிந்தி ஹட் ஜாதி ஹே, திலக் மிட் ஜாதா ஹே. தோ கோய் ஐசா காரண பன்தா ஹே தோ வோ திலக் பி நஹி ரஹ பாதா. தோ ஐசே ஹி திலக் தோ பாபா நே லகாயா. பாபா நே கஹா சதா ஜாக்தி ஜோத் பன்கர் ரஹனா ஹே. லேக்கின் வோ திலக் ஹமாரா கின்ஹி காரணோ சே, சாஹே வோ பரிஸ்தித்தியாம் ஆதி ஹே, சாஹே வோ கோய் சமஸ்யாயே ஆதி ஹே, தேஹ அபிமான் மே ஆ ஜாதே ஹே, வோ திலக் காயம் நஹி ரஹதா, திலக் மிட் ஜாதா ஹே. ஹம் கோஷிஷ் ஜரூர் கர்த்தே ஹே, காஸ்கர் ஜப் யோக மே பேட்தே ஹே தப் அப்னே கோ ஸ்மிருதி திலானே கா பிரயாஸ் கர்த்தே ஹே கி மே ஆத்மா ஹூ, மே ஆத்மா இஸ் ஷரீர் கோ சலானே வாலி சேதன் சக்தி ஹூ. ஃபிர் பாபா நே சிர்ஃப் ஆத்மா கி ஸ்மிருதி நஹி திலாயி, லேக்கின் மே கௌன் சி ஆத்மா ஹூ, கௌன் சி ஆத்மா ஹூ, மே சாந்த் ஸ்வரூப் ஆத்மா ஹூ, மே பவித்ர ஆத்மா ஹூ, மே தேவதா பன்னே வாலி ஆத்மா ஹூ, மே ஸ்ரேஷ்ட ஆத்மா ஹூ, மே பத்மா பதம் பாக்யவான் ஆத்மா ஹூ, யா கோட்டோ மே கோயி, கோயி மே பி கோயி, பகவான் கி சுனி ஹுயி விசேஷ ஆத்மா ஹூ. ஐசே கித்னி ஹி ஸ்மிருதியா பாபா நே ஹமே திலாயி ஹே. தோ பாபா ஹமே யே நஹி கஹதே கி சிர்ஃப் ஹமே ஆத்மிக் ஸ்மிருதி மே ரஹனா ஹே, லேக்கின் ஜோ ஆத்மா கா ஸ்வமான் பாபா நே ஹமே யாத் திலாயா. கியூங்கி ஷிவ் பாபா த்ரிகால் தர்ஷி ஹே, வோ ஹமாரே தீனோ காலோ கோ ஹமாரே சாம்னே பிரத்யக்ஷ கர்த்தே ஹே. ஹம் அப்னே தீனோ காலோ கோ நஹி ஜானதே தே, பாபா நே ஆக்கர் கே ஹமே வோ ஸ்மிருதி திலாயி கி ஹம் வோ ஸ்ரேஷ்ட ஆத்மாயே தே. ஆர் ஜேசே ஜேசே சமய கா சக்கர கூமா, உஸ்ஸே ஜோ பிரபாவ் ஆத்மா பர் படே வோ தேஹ அபிமான் மே ஆ கயி, தோ ஹமாரி யே விசேஷதாயே சலி கயி. லேக்கின் அப் புனஹ சங்கம் யுக் பர் ஹமே ஃபிர் சே வஹி ஸ்ரேஷ்ட ஆத்மா கே ஸ்வரூப் மே ஆ ஜானா ஹே. லேக்கின் ஜப் ஹம் கர்ம மே ஜாதே ஹே தோ ஜாதாதர் ஹம் கர்ம கான்ஷியஸ் ஹோ ஜாதே ஹே, கியூங்கி ஹர் ஏக் கோ பிரவிருத்தி ஹே, கோய் நா கோய் ரோல் ஹம் சப் ப்ளே கர் ரஹே ஹே. தோ ஜோ பி ஹம் காரிய கர் ரஹே ஹே உஸ் காரிய கா பிரபாவ் ஹமாரே மன் பர் படதா ஹே, ஆர் ஃபிர் ஸ்மிருதி சே ஹம் விஸ்மிருதி மே சலே ஜாதே ஹே. யா 63 ஜன்மோ கே வோ தேஹ அபிமான் கே சன்ஸ்கார் ஹமாரே இத்தனே பக்கே ஹே கி ஹம் ஆத்மிக் ஸ்மிருதி மே ரஹனா சாதே ஹுயே பி நஹி ரஹ பாதே ஹே, தோ ஹமாரா வோ திலக் मिट जाता है। तो इसके लिए बाबा हमें बार बार मुरलियों में याद दिलाते हैं। कोई साकार मुरली ऐसी नहीं होती जिसमें बाबा ये ना कहे कि हमें देही अभिमानी बनना है। आत्मा समझ करके हमको शिव बाबा को याद करना है। तो हर दिन क्यों कहता है बाबा? क्योंकि हर दिन हम भूल जाते हैं। कई बार हमें कॉमन पॉइंट लगती है कि बाबा तो रोज ही कहते ना मुरली में, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन बाबा हमें पूरी तरह से आत्म अभिमानी हम बन जाएं ना, वो पुरुषार्थ कराते हैं। तो इसीलिए वो हर दिन स्मृति में लाना जरूरी होता है। और जितना हम आत्मअभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना स्वतः ही जो आत्मा के गुण हैं वो इमर्ज रहते हैं। देह अभिमान विकारों की जड़ है, तो आत्मअभिमान कहेंगे गुणों की उन्नति करता है। तो हमें शांति, प्रेम, सुख, आनंद, उसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आत्मा के गुण हैं और आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो वो इमर्ज होते हैं। आत्मा की प्यूरिटी की पावर, रूहानियत की शक्ति, वो भी झलक फलक में दिखाई देने लगती है। दूसरे भी जो हमारे संपर्क में आते हैं वो महसूस करते हैं इस बात को कि इनकी दृष्टि वृत्ति, इनके जो वाइब्रेशंस हैं वो हमसे भिन्न है, हमारे जैसे कॉमन नहीं है। जितना जितना हमारा अभ्यास निरंतर होगा, जितना हमारा अभ्यास पक्का होगा, उतना ही वो रूहानियत और प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हमारे चेहरे और चलन से दूसरों को अनुभव होंगे। और ये भी कि हम तमोगुणी वाइब्रेशंस में रहते हैं, आज कलयुगी वातावरण है तो नेगेटिव वाइब्रेशंस आत्माओं के बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि सभी आत्माओं में विकार हैं और ये विकारों की प्रबलता का समय है। और हम उनके संपर्क में आते हैं, जब भी हम कार्य व्यवहार में होते हैं तो हम सभी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो फिर उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और यदि हम अपनी स्मृति में नहीं हैं, अगर हम पावरफुल नहीं हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारी स्थिति को हलचल में ला सकते हैं, हमारे मन की शांति को भंग कर सकते हैं। मन हलचल में आएगा, हम परेशान हो सकते हैं, हम खुद भी दुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हम विश्व परिवर्तक हैं बाबा ने कहा, तो मेरे वाइब्रेशंस का प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़ना चाहिए। अगर वो अशांत हैं, वो परेशान हैं, वो दुखी हैं, या उनमें कोई इम्प्यूरिटी है, देह अभिमान है, तो हमारी स्थिति से उनकी स्थिति बदल जाए। जैसे अभी भाई जी भी सुना रहे थे कि ज्वालामुखी योग क्या है, कि दुखी आत्माओं को हम सुखी बना दें, अशांत आत्माओं को हम शांत बना दें। तो ये हम आत्माओं की शक्ति है, लेकिन वो कार्य तब करेगी जब हमारी वो आत्मिक स्मृति का तिलक निरंतर लगा रहेगा। और ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ऐसे नहीं जब चाहिए होगा तब हम आत्मा की स्मृति में आ जाएंगे ना, वो इतना सहज नहीं होता है। लेकिन अगर हम निरंतर उस पर अटेंशन देते हैं, उस अभ्यास को पक्का करते हैं, सभी को भी हम आत्मा रूप में देखते हैं, अपने को ही नहीं लेकिन जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनके प्रति भी हमारी वही दृष्टि वृत्ति रहती है, तो फिर जो भी हमारे ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं वो हमारे लिए बहुत सहज हो जाती हैं। फिर बाबा ने हमें तख्त नशीन बनाया है, तो दो तख्त हैं, ब्राह्मण जन्म में, एक है अकाल तख्त और दूसरा है दल तख्त, बाबा का दल तख्त। तो अकाल तख्त पर तो आत्मा विराजमान है, लेकिन बाबा के दल तख्त पर हम सब बाबा के बच्चे बैठ सकते हैं। संगम युग पर बाबा कहता है, मेरा दल तख्त इतना बड़ा है कि विश्व की सब आत्माएं भी अगर उस पर बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं। बेहद का तख्त है, दुनिया में जो तख्त होता है उस पर एक ही बैठ सकता है एक समय में, और वो भी सदा काल नहीं बैठ सकते। दूसरे कोशिश करते रहते हैं कि इनको कैसे तख्त से उतार दें। यहाँ भी माया कोशिश करती है बाबा के बच्चों को बाबा के दिल तख्त से उतारने के लिए, लेकिन दिल तख्त पर हम सब बैठ सकते हैं। पर दिल तख्त नशीन बनने वाले बच्चों की कुछ निशानियां हैं जो बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होते हैं। तो क्या निशानी होगी, बाबा को क्या पसंद है? जो बाबा को पसंद है, जिससे बाबा राजी होते हैं, उस आधार पर हम उनका दिल जीत सकते हैं। तो सबसे पहला जो बाबा को गुण पसंद है वो है सच्चाई और सफाई। इसीलिए कहा सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चाई सफाई का गुण इस कलयुगी दुनिया में निभाना बहुत मुश्किल होता है। बाहर के वातावरण में तो है ही है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी जो बाबा हमसे सच्चाई सफाई कहते हैं, बाबा कई बार हमसे कहते हैं मानो श्रीमद के विपरीत कोई कार्य हो गया हमसे। हम सभी पुरुषार्थी हैं, पूरी तरह से बाबा के श्रीमद पर नहीं चल पाते। कई बार हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, फिर हमें रियलाइज होता है कि ये गलती हो गई। तो बाबा कहते हैं कि चाट दो, रोज सोने के पहले बाबा को सच सच सुना दो। तो अगर हमने बाबा को सच सुना दिया तो आधा वही माफ हो जाता है, और जो हुआ है कर्म उसका थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो बनता ही है। ब्राह्मण है तो बाबा उसको 100 गुना कहते हैं। ज्ञानी आत्माएं अगर कोई ऐसा कर्म करती हैं तो फिर वो एक का एक नहीं होता है, एक का 100 गुना होता है। लेकिन बाबा को सुना दिया तो आधा तो खत्म हो जाता है। और आगे के लिए भी बाबा फिर हमें शक्ति देते हैं ताकि वही फिर हमसे रिपीट ना हो। दूसरा, कई बार होता है कि मानो हमारी गलती सामने आ गई किसी दूसरे के, फिर यहाँ हम जो निमित्त आत्माएं हैं उनके आगे कई बार सच्चाई सफाई से अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। एक तो उसमें कई बार सूक्ष्म अहम होता है। अहम क्या होता है कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली और मेरी गलती सबके सामने आ गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, और कोई भी अपने को बदनाम नहीं करना चाहता तो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके लिए झूठ का सहारा लेते हैं, सोचते हैं किसी तरह से अभी तो बच जाएं, बाद में देखा जाएगा। फिर और एक झूठ के पीछे कई बार कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक तो विकर्म हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ फिर और भी हम अपने विकर्म बनाते जाते हैं। तो बाबा इसके लिए कहते हैं
युग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, ये संगम का स्वर्णिम युग है। शिव पिता
बाबा कहते हैं कि हो सकता है कि उस समय के लिए हमारी जीत हो भी जाए, हम जो चाहते हैं मन चाही प्राप्ति वो हमें हो जाती है, लेकिन वो अल्पकाल की जीत हमारी सदा काल की भगवान के दिल में हार है। फिर हम बाबा के दिल तख्त नशीन नहीं बन सकते, और जो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति अविनाशी प्राप्ति हमें होने वाली है, फिर उसमें भी अंतर पड़ जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि सच बोलने में हमें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसीलिए कहते हैं कि सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो उस समय हमने थोड़ा मुश्किल का सामना कर लिया, या कई बार हम हार भी गए, उसकी वजह से ऐसा लग भी सकता है कि हमारी बदनामी हो गई या हम थोड़ा हार का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो सदा काल की जीत है जो हमें भगवान के दिल तख्त पर बिठाती है। और इसीलिए कहते हैं फिर सच तो बिठो नच, जो सच्चा है। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में रियलिटी की बात की, तीन बातें कही ना बाबा ने, प्योरिटी रियलिटी और संबंधों की समीपता। तो जो रियलिटी वाली आत्मा है वो सदा ही हर्षित मुख होती है और स्पष्ट होती है, दिल साफ है, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा व्यवहार नहीं है जो हमारे दिल में किसी के प्रति भावनाएं होती हैं, वो कई बार अंदर कुछ और होती हैं, वो नेगेटिव होती हैं कई बार, लेकिन बाहर में हम ऐसा व्यवहार नहीं करते। बाहर में तो बहुत मीठा व्यवहार करते हैं हम, लेकिन फिर जैसे ही पीठ पीछे होता है, इसको कई बार लोग कहावत में कहते हैं मुख में राम बगल में चुरी, कई लोगों का जो व्यवहार होता है वो इस तरह का होता है, दूसरों को धोखा देने वाला या दूसरों के साथ जैसे चीट करते हैं। तो ऐसा हेरा फेरी वाली जो भी बातें हैं ये शिव बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो भोला बाबा है और उसे कौन बच्चे पसंद हैं, जो भोले हैं, जो सरल हैं, सच्चे हैं, सरल हृदय वाले हैं, दिल से साफ हैं, तो वो बाबा के बच्चे बाबा के दिल तख्त पर होते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं विशाल दिल और सच्ची दिल, विशाल दिमाग और सच्ची दिल, ये दो बातें हैं। कईयों का दिमाग विशाल होता है, बहुत तेज होता है, पर जरूरी नहीं है कि दिल सच्ची हो। दिमाग तेज होगा तो स्मृति अच्छी होगी, कई बातों को कई पॉइंट्स को कैच करते हैं, सुना भी सकते हैं, ज्ञान को अच्छी तरह से सुना भी सकते हैं। जो सच्ची दिल वाले हैं जरूरी नहीं है कि वो बहुत तेज दिमाग वाले होंगे, लेकिन अगर दिल सच्ची है तो बाबा कहता है जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, बाबा से कनेक्शन है ना, तो वो उनको टच करता है और सही समय पर जो बात कहलवानी है वो ऐसी बात बाबा उनसे कहलवाएगा जो दूसरों के दिल को लगेगी। तो दिलाराम को जिसने अपना बनाया है, अपने दिल में बिठाया है, उसकी बात का तीर दिल तक लगेगा। और जो दिमाग से बात कहेंगे उसकी महिमा होगी, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा कहा। तो बाबा ने कहा वो ऐसे होते हैं जैसे पंडित दूसरों को कहते हैं, लेकिन जैसे कहेंगे कि हमें पॉइंट बन करके बाबा को याद करना है, बिंदु रूप स्थिति का जो योग होता है। तो बाबा ने कहा बिंदु रूप बन नहीं सकेंगे, बिंदु रूप बनने में वो सेकंड नंबर होंगे, माना थोड़ा युद्ध करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर कहीं वो बीज रूप स्थिति का अनुभव होगा। लेकिन जो दिल तप्त नशीन आत्मा है, बाबा को याद किया और बाबा की याद में समा गए, बिंदु रूप बाप में लवलीन स्थिति का अनुभव करना उनके लिए बहुत सहज होगा। तो हम इन निशानियों से समझ सकते हैं कि हम बाबा के कितने दिल तख्त नशीन हैं। दूसरी बात बाबा को पसंद है, एक बाप दूसरा ना कोई, यानी बाबा ही मेरा संसार है, बाबा के अलावा और किसी व्यक्ति वस्तु में हमारी बुद्धि ना जाए। जीवन का आधार सिर्फ बाबा है, सर्व संबंधों का अनुभव हम बाबा के साथ ही करते हैं। हर पूरी दिनचर्या में, हर समय के, हर आवश्यकता के समय हमें बाबा ही याद आता है, तो बाबा के दिल पर हम हैं। और तीसरा जो ताज है, संगम युग पर हम ब्राह्मणों को जो ताज मिला है वो है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, या हम कहेंगे हम सभी विश्व सेवाधारी हैं, हम सब बाबा के हैंड्स हैं। ब्रह्मा को सहस्त्रों बुझाएं दिखाई हैं और उसका भाव यही है कि बाबा का एक एक बच्चा इस सतयुगी के स्थापना के कार्य में सहयोगी है, चाहे वो नया ही क्यों ना है, अभी 7 दिन का कोर्स ही किया हो, लेकिन फिर भी बाबा की सेवा में तो बाबा के सभी बच्चे होते हैं, फिर यथाशक्ति हैं, नंबरवार हैं, वो तो है ही। तो कोई पूरी तरह से उस सेवा के ताजधारी हैं, किसी के सिर पर बड़ा ताज है और किसी के सिर पर छोटा ताज है, लेकिन ताजधारी सभी हैं। और जो वर्तमान का ताज है वो ही भविष्य में भी फिर राज्य का ताज पहनने वाले हैं, राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। तो हम सभी मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से बाबा की सेवा करते हैं। तन से यज्ञ सेवा का जब भी हमें चांस होता है, चाहे बाबा के इस महायज्ञ की सेवा है, चाहे सेंटरों पर जब भी सेवा के कार्यक्रम होते हैं, होते ही रहते हैं, सेवाओं का विस्तार है, तो सभी का सहयोग होता है और सभी के सहयोग से वो कार्य में सफलता होती है। तो जितना हम अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने तन को बाबा की सेवा में सफल करते हैं, जिसको बाबा कहता है हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में, दधीचि ऋषि मिसल बाबा कहते हैं कई बार कि हमें यज्ञ सेवा में वो सफल करनी है, तो हमारी कर्मेंद्रियां पावन होती हैं, शीतल होती हैं। जितनी इंद्रियां बाबा की सेवा में लगती हैं उतना वो विशेषता में भरती है। वाचा से भी हम सेवा करते हैं, आत्माओं को बाबा के समीप लाने की कोशिश करते हैं, अपना अनुभव सुना करके, ज्ञान की बातें सुना करके, फिर उसके बहुत विधियां हैं। आजकल मीडिया के द्वारा भी बहुत साधन है ऐसे सेवा के, जिसके द्वारा हम अनेक एक समय में अनेक आत्माओं तक पहुंच सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि एक एक को बैठकर कोर्स कराया जाता था, अब वो समय नहीं, अब एक साथ हम कई आत्माओं को, और जब टेलीविजन रेडियो के माध्यम से होते हैं तो कई बार लाखों तक करोड़ों तक भी वो बाबा का संदेश जा रहा होता है। लेकिन वाचा सेवा भी चांस के प्रमाण और अभ्यास के प्रमाण ही हम करते हैं, उसमें हर एक का अभ्यास अपना अपना अलग अलग है। लेकिन जो तीसरी सेवा है वो है मनसा सेवा। मनसा सेवा बहुत सहज सेवा है लेकिन सूक्ष्म सेवा है, पर जितनी सूक्ष्म है उतनी ही पावरफुल है और अदृश्य भी है। और सेवाएं तो हमें दिखाई देती हैं कि हम कर रहे हैं, उसका कई बार हमें सामने प्रमाण भी मिलता है, लेकिन मनसा सेवा तो वाइब्रेशंस के स्तर पर होती है और मन के वाइब्रेशंस तो हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन उसके भी परिणाम हैं। और वो परिणाम जब हम योग का प्रयोग करते हैं तो हम अनुभव भी करते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि विज्ञान भी जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना ही पावरफुल होता जा रहा है, और इसीलिए मनसा सेवा भी जितनी सूक्ष्म है उतनी ही पावरफुल है। देखो, हम कई साधन देख सकते हैं, जैसे फोन हम यूज करते हैं आजकल, जब फोन शुरू हुए थे तो फोन का जो सेट था वो कितने बड़े साइज का था, एक ही स्थान पर उसे रखा जाता था, किसी का फोन आया है तो वहीं जाकर के बात करनी है, और वो भी कई बार इतना सहज नहीं, फोन बुक करने पड़ते थे। अगर कुछ किसी को ट्रंक कॉल करना है, स्टडी कॉल करना है, तो बहुत कठिनाई होती थी उसके अंदर। फिर जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की तो फिर कॉर्डलेस फोन आ गए, आप अपने ही घर के अंदर कहीं भी बात कर सकते हैं, उसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा मोबाइल होकर के कहीं भी घर में बात की जा सकती है। फिर और आगे बढ़ा विज्ञान तो वो कॉर्डलेस किस में परिवर्तन हो गए, मोबाइल में। तो पहले जब मोबाइल फोन आया तो उसमें सब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कहीं भी ये सुविधा हो गई कि आप कहीं भी, घर से बाहर भी, जहां भी आप हैं, आप उस फोन से बात कर सकते हैं। लेकिन आकार कितना हो गया, बहुत छोटा, कि हाथ में उसे पकड़ा जा सकता है। और फिर और उन्नति की तो अब उस छोटे ही मोबाइल में कहेंगे सारी दुनिया है। अगर इंटरनेट है, स्मार्टफोन है आपके पास, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, उसमें सब फंक्शन है, उसमें कैमरा है, उसमें वीडियो है, उसमें ऑडियो है, उसमें टॉर्च है, उसमें घड़ी है, क्या नहीं है, और कितना छोटा है। तो जितना सूक्ष्म हो गया उतना पावरफुल हो गया, ऐसे ही कहेंगे। तो ये भी मनसा शक्ति भी ऐसे ही है कि हम एक स्थान पर बैठे हुए भी पूरे विश्व की आत्माओं तक जो वाइब्रेशंस फैलाना चाहें, शांति के, शक्ति के, गुणों के, वो हम फैला सकते हैं। लेकिन पावरफुल मनसा होनी चाहिए, बाबा कहता है लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति हो, तब हम वो वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अगर मनसा कमजोर है, जैसे हम कहते हैं 0 वॉट का बल्ब जल रहा है कितनी रोशनी होगी, 100 वॉट का बल्ब जल रहा है कितनी रोशनी होगी, और 1000 वॉट का बल्ब जल रहा है और 1 लाइट हाउस है, सर्च लाइट है, अंतर होगा। तो 100 वॉट का बल्ब एक कमरे को रोशन करेगा, 1000 वॉट का बल्ब एक मैदान रोशन कर देगा, 1 लाइट हाउस मीलों दूर तक भटकते हुए जहाज को भी रास्ता दिखा देगा। तो अगर मेरा 0 वॉट का बल्ब है तो कितने वाइब्रेशन फैलेंगे। तो मनसा पावरफुल हो उसके लिए अटेंशन देने की जरूरत है। और मनसा कमजोर कैसे होती है, हमारी मनसा सेवा की बाबा ने विधि बताई है, अगर हम उस विधि पूर्वक करते हैं तो ही हमारे मनसा वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं और हमें सफलता मिलती है। तो मनसा सेवा शुभ भावना, शुभ कामना की सेवा है। जिस भी आत्मा के प्रति या अनेक आत्माओं के प्रति हमें जो सेवा करनी है उनके प्रति हमारी कौन सी भावना होनी चाहिए? सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, सदा निस्वार्थ भाव हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा परोपकार की भावना हो। ऐसे नहीं कि हम कर रहे हैं तो इसको भी करना चाहिए, साथ साथ लेने की भावना आ जाए, या हमारी फीलिंग्स चेंज होती रहे। कभी कभी हम शुभ भावना रखते हैं, कभी कभी दुर्भावना भी हो जाती है, क्योंकि जिसके प्रति हमें मनसा सेवा करनी है कहीं ना कहीं वो आत्मा विघ्न रूप है, ऐसा ही कहेंगे, तभी हम उसके प्रति मनसा सेवा करने की बात सोचते हैं। हम दो तरह से, या तो हमें उस आत्मा का कल्याण करना है, हम चाहते हैं कि वो बाबा से अपना वर्षा ले पाए, उसका भी भाग्य बन जाए, या तो ये भावना है, या फिर वो आत्मा कहीं ना कहीं कोई विघ्न रूप है तो वो विघ्न विनाश करने के लिए भी हम वो मनसा सेवा करते हैं, लेकिन उनके कर्मों के कारण हमारी भावनाएं अगर बदल जाती हैं, उनसे हमारे संस्कार नहीं मिलते या उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, हम रहते उनके साथ ही हैं या उनके आसपास ही हमारा उनके साथ कोई कर्म का हिसाब किताब संस्कारों का टकराव है, तो भावनाएं सदा शुभ नहीं रह पाती। तो फिर अगर हम उस आत्मा के प्रति वो सेवा कर रहे हैं तो उतनी सफलता हमें नहीं मिलेगी। कई भाई बहने ये शिकायत करते हैं कि बहन जी हम कर तो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। कई बार बच्चों के लिए ही करते हैं, कई बार माताएं पति के लिए करती हैं या पति अपनी पत्नी के लिए करते हैं, ज्यादा उनके प्रति हमारी भावना होती है कि इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि 24 घंटे उनके साथ ही हमारा व्यवहार है तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता रहता है, और उसके कारण हमारी भावनाएं भी उनके प्रति सदा शुभ नहीं रहती, बदलती रहती हैं, और जब बदलती रहती हैं तो हम देखते हैं कुछ नहीं हो रहा, इतना वाइब्रेशन दे रहे हैं लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि विधि सही नहीं है, तो सिद्धि भी फिर नहीं मिलेगी। कोई भी चीज भी हम बनाते हैं ना रसोई में, तो उसके बनाने की भी सही विधि हमें प्रयोग करनी पड़ती है, तभी वो चीज जो है उसका वही स्वाद होता है जो हम चाहते हैं। तो यहां भी ये तो योग की इतनी ऊंची विधि है, तो फिर अगर हम उसे विधि पूर्वक नहीं कर रहे तो फिर जो सिद्धि हम चाहते हैं वो हमें अनुभव नहीं होती है, और कई बार हमारी मनसा लीकेज होती है। अभी भी आपने क्लास सुनी मन जीत के ऊपर, तो लीकेज कैसे होता है मन की शक्ति का, जब हम बहुत व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, जब हम नेगेटिव थॉट्स में बहुत चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में हमारा मन बहुत उलझा रहता है, हमें ही उसका भान नहीं होता कि हम कैसे छोटी छोटी बातों में उलझ गए। वो तो जब योग में बैठते हैं तब स्मृति में आता है, अगर योग में नहीं है, आत्मिक स्मृति में नहीं है, विस्मृति में है, तो फिर देह अभिमान हमें पूरी तरह से व्यर्थ संकल्पों विकल्पों में ले जाता है, और वो हमारी शक्ति को कई गुना नष्ट करता रहता है। और जब मनसा कमजोर होती है तो हम अपने ही विघ्नों को नहीं जीत पाते, तो दूसरों की सेवा क्या करेंगे, खुद ही कमजोर हैं तो दूसरों को वाइब्रेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। फिर कई बार क्यों क्या के संकल्पों में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये विघ्न मेरे पर ही क्यों, मेरा ही भाग्य ऐसा है क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरा ही हिसाब किताब है क्या, माना क्या क्यों कैसे। और बाबा क्या कहता है, सब क्यों हो रहा है ये तो बाबा ने समझा दिया है ना, क्यों होता है ये सब कुछ, दो बातें हैं। कौन सी दो बातें हैं, एक तो हमारे हिसाब किताब है जिन्हें हमें चुकतू करना है, और दूसरे हमारे पेपर हैं जिन्हें हमें पास करना है, तभी पता चलेगा कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और पढ़ाई की क्लास तभी आगे बढ़ेगी, हम अनुभवी तभी बनेंगे जब हम उस पेपर को पास करेंगे। बिना पेपर दिए कोई स्टूडेंट क्लास आगे बढ़ता है? आपको कोई विजयी मान लेगा बिना युद्ध किए हुए? कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाके युद्ध ही ना करे और कहे कि मैं विजयी हो गया तो कोई मान लेगा, है ना? तो अगर हमें शिव बाबा ने मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है और फिर जब माया के पेपर आते हैं और उस ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हम उन पर अगर विजय प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर कैसे कहेंगे कि हम विजयी हैं? तो उसी समय हमें वो स्मृति आए और हम फुल स्टॉप लगा पाए। इसको बाबा कहता है कंसोलिंग पावर और रूलिंग पावर। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे हम यूज कर लें। मानो मन बहुत विस्तार में जा रहा है, किसी बात में चला जाता है, कोई भी घटना होती है जीवन में, बहुत सोचते हैं, बीती हुई बातों को ही सोचते रहते हैं, कई बार ये हुआ ऐसा हुआ, विस्तार में जा रहा है ना मन। अब मुझे सार में लाने की जरूरत है उसको, तो विस्तार को सार में लाना, समेट लेना, खत्म कर देना उसको। तो पास्ट इज पास्ट। बाबा ने कहा कि जो बात आती है ना उसको भी अकल है कि अब मुझे 5000 साल के बाद आना है, दोबारा नहीं आने वाली वो, फिर जब अगला चक्र होगा तब 5000 साल बाद आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इन व्यर्थ की उलझनों से मन को निकालने की पावर हमें यूज करनी है, और वो तब होगा जब अटेंशन होगा हमारा। अगर हमारा अटेंशन नहीं है तो हमारा मन सहज ही इस तरह के कोई ना कोई समस्याओं से घिरा ही रहता है और हम अपनी शक्ति को उसमें गंवाते रहते हैं। फिर जो हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस उनको जाते हैं। तभी बाबा शुभ भावना शुभ कामना की बात कहते हैं कि सदा कोई कैसी भी आत्मा है उसके प्रति शुभ भावना रखो। तो हम कई बार सोचते हैं मैंने इसको तो कुछ कहा नहीं, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? मन से कह दिया ना। मन से मुझे जो बात पसंद नहीं है वो अपने मन में मैंने सोच ली, अच्छा ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, तो मेरी वृत्ति जो उस आत्मा के प्रति है वो उस तक पहुंच जाती है। एक बार ऐसे ही एक बूढ़ी माता, वो कुछ बोझ वाला सामान था उसके हाथ में, वो अपने गांव जा रही थी, पैदल जा रही थी, तो उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था और गांव थोड़ा दूर था कुछ किलोमीटर। तो पास से एक घोड़े वाला गुजरा तो उसने उसको जोर से आवाज लगाई, कहा रुको रुको तुम क्या उस गांव में जा रहे हो? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा ये मेरे को बहुत बोझ लग रहा है, तुम तो घोड़े पर जा रहे हो, अपने घोड़े पर इसे रख के वहां तक पहुंचा दो। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। तो रुका नहीं, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो उसको वो अच्छा आदमी नहीं था, तो उसने सोचा कि ये बुढ़िया मुझे अपना सामान दे रही थी, मैंने ले क्यों नहीं लिया, जरूरी थोड़ी था कि मैं उसके गांव पहुंचाता, मैं ले जाता इसको और जो उसका था वो मुझे मिल जाता। और इधर बुढ़िया ने भी सोचा कि मैं भी कैसी मूर्ख हूं, मैं अनजान आदमी को बोल रही हूं मेरा सामान तू ले जा और गांव पहुंचा दे, कहीं ये गांव ना पहुंचाए और खुद ले जाए। देखो दोनों के विचार। तो वो उस विचार से वो पलट कर आया, तो उसने कहा कि माँ दे दो मुझे, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा नहीं अब नहीं देना है मुझे। तो उसने कहा क्यों नहीं देना है? तो उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया, जिसने तुम्हें कहा है लेने के लिए उसने ही मुझे कहा है नहीं देने के लिए। एक दूसरे की बात कैच हो गई, है ना? तो ऐसे ही हम वाइब्रेशन के लेवल पर एक दूसरे को कैच कर लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रखता है या हम उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। तो इसीलिए हिसाब किताब चुकता करने की जो विधि बाबा ने हमें बताई है वो है शुभ भावना और शुभ कामना। सदा ही और ये बहुत मुश्किल पुरुषार्थ है, मैं ऐसा कहूंगी कि इतना सहज नहीं है ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रख पाना। इसके लिए बार 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 हमें, जैसे हम कहते हैं हम योग का प्रयोग करें, कई दिनों तक हम अपने इस संस्कार पर काम करें तब शायद हम उस पर जीत पाएं, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब हम मनसा सेवा करते हैं तो मनसा सेवा के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। एकाग्रता अर्थात एक शुद्ध संकल्प में मन को स्थित कर देना। जो भी शुद्ध संकल्प है, अगर जितना समय मैं चाहूं जब चाहूं उसमें स्थित हो जाऊं, मानो मुझे शिव बाबा के पास परम धाम में शांत स्वरूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में भी, शांति की स्थिति में मुझे 15 मिनट बिल्कुल उसी स्थिति का अनुभव करना है, तो मेरा मन हिले नहीं, बिल्कुल 15 मिनट उसी स्थिति में मन स्थित हो जाए, तो हम कहेंगे एकाग्रता। और जब ऐसा संकल्प होता है तो उसमें बहुत पावर होती है। हम कोई भी संकल्प कर सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं उसमें स्थित हो सकते हैं, या मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, जो भी बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, वो कोई भी एक श्रेष्ठ स्मृति में लंबे समय तक स्थित हो जाना, और फिर जिस आत्मा को आप वाइब्रेशन देना चाहो वो काम करेगा। वो एकाग्रता में अग्नि जैसी पावर होती है, जिसे योग अग्नि कहा, और इसीलिए कहते हैं कि जब वो योग अग्नि होती है तभी हमारे विकर्म विनाश होते हैं और तभी हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। दुनिया में भी लोग एकाग्रता की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उससे भी वो असंभव को संभव, असाधारण जिसे कहते हैं ना, असाधारण प्रतिभा का जो प्रदर्शन होता है वो सब एकाग्रता की शक्ति के आधार पर ही होता है। जो साइंटिस्ट ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करके लाए हैं, जो चमत्कार जैसी इन्वेंशंस हैं आज के समय में, वो भी एकाग्रता की शक्ति से ही हुई है। मुझे याद है कि एक इजराइल का साइंटिस्ट था, कुछ साल पहले की बात है, वो प्रैक्टिकल बात है, साइकोलॉजिस्ट था यूरी गेलर। तो दादी जानकी जी के साथ लंदन में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो क्या दिखाया उसने कि वो मन में, अगर अपने मन को एकाग्र करके, जैसे अगर उसने घड़ी को देख लिया, तो घड़ी को देखा और सोचा स्टॉप, तो वो घड़ी स्टॉप हो जाएगी, और फिर उसने संकल्प किया घड़ी चल जाए तो वो घड़ी चलने लग जाएगी। उसने किसी लोगों से चाबी निकलवाई, गाड़ी की चाबी, और वो चाबी अपने हाथ में ली और ये संकल्प किया कि ये चाबी मुड़ जाए, तो वो चाबी मुड़ गई। फिर उसने ये संकल्प किया कि चाबी फिर से सीधी हो जाए, फिर से सीधी हो गई। ऐसे ही उसने कुछ अनाज अंकुरित कराए अपनी हथेली पर उसी समय, जैसे मूंग को हम भिगोते हैं और भिगो करके फिर उसको रखते हैं तब वो अंकुरित होता है, लेकिन उसने हथेली पर मूंग रखे और उनको थोड़ा समय एकाग्रता से देखा तो वो मूंग में अंकुर निकल गए। तो देखो, ये एकाग्रता की शक्ति, जो असंभव से दिखने वाली चीज है वो संभव हुई। फिर दादी जी बैठे थे साथ में, तो दादी जी ने कहा कि मैं ये सब सिद्धियां तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं राजयोग का अभ्यास पूरी सभा में कराऊंगी और सबको शांति का अनुभव मैं करा सकती हूँ। और दादी ने वही राजयोग का अभ्यास कराया, पूरी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस, वो बड़ा हॉल था, एकदम भरा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जो साइंटिस्ट वो बैठा था उसने भी वो साइलेंस का अनुभव किया। तब उसने दादी को कहा कि दादी, ये जो है ये तो चमत्कार जैसी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपने शांति का अनुभव कराया, सचमुच संसार को इसकी जरूरत है, और ये शांति का अनुभव मैं नहीं करा सकता, ये पावर मेरे पास नहीं है। तो तो ये हम आत्माओं के पास, क्योंकि हम शांति के सागर के डायरेक्ट बच्चे हैं, हम बाबा से वो शांति की शक्ति स्वयं में लेकर के पूरे विश्व तक वो वाइब्रेशन फैलाने की क्षमता हम रखते हैं। तो लेकिन मन को वो एकाग्रता का अभ्यास भी बहुत काल का चाहिए, ये बाबा हमें कहते हैं। कि हम कई बार ब्राह्मण भी शिकायत करते हैं, जो नए नए आते हैं ज्ञान में वो तो कहते ही हैं कि मन नहीं लगता है, भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन दूसरी दूसरी बातों में ज्यादा चला जाता है। पर कई बार जब मन उलझा हुआ है कई समस्याओं में, तब ऐसा होता है कि बाबा से जो कनेक्शन और रिलेशन हमारा हमें अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और वो एकाग्रता भी योग में नहीं बनती है। और अगर एकाग्रता से योग नहीं है तो फिर हम अन्य आत्माओं की सेवा नहीं कर पाते हैं। मनसा सेवा से अगर एकाग्रता है तो हम जो बताया अन्य आत्माओं तक संदेश तो देते ही हैं, हम किसी भी आत्मा को भाग्यवान बनने की, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनने की, या कहेंगे निराश जो आत्मा है उसमें आशा का संचार करने की, ऐसी प्रेरणाएं तो दे ही सकते हैं, लेकिन रोग का भी इलाज कर सकते हैं। और ये प्रयोग भी अब राजयोग में भी हम करने लगे हैं। आप सुनते हैं कि जैसे हार्ट पेशेंट्स पर अपने यहाँ प्रोजेक्ट चलता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम करते हैं, अब डायबिटीज के मरीजों पर भी ये करने लगे हैं। हमने भी ऐसे, क्योंकि जो शुरुआत रही वो एज ए डॉक्टर बाबा के घर में, हम हॉस्पिटल में आए सेवाओं में, तब हमने भी कई ऐसे प्रयोग किए और देखा कि जब हम एकाग्रता से किसी आत्मा को, रोगी आत्मा को भी सहयोग देने की कोशिश करते हैं, उसको निरोगी बनाने का प्रयास करते हैं, तो दवाई तो है, दवाई बंद करने की बात नहीं है, क्योंकि शरीर के जो तत्व हैं और अगर वो रोग की अवस्था में है तो उस अनुसार उन्हें जिस दवाई की आवश्यकता है वो तो देनी ही है। लेकिन जो हीलिंग है वो हीलिंग एक तो तीव्र गति से हो जाए और दूसरा सदा के लिए हो जाए, ये दो बातें होती हैं। तो हमने देखा कि उसमें वो बहुत कार्य करता है, यहां तक कि अपनी भी ऐसी असाध्य कई बीमारियों का इलाज भी हम कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता होना जरूरी है, वो उसकी विधि है। पूरी एकाग्रता से यदि कुछ समय तक हम उस रोग के स्थान को जो वाइब्रेशंस देना चाहिए वो वाइब्रेशंस अगर हम देते हैं बाबा की, वो सकाश देते हैं, तो जैसे आज भी बाबा ने कहा मुरली में, ये बात आई कर्म भोग और कर्म योग की, तो अगर दर्द फील हो रहा है बाबा ने कहा और योग में है तो दर्द भी अनुभव नहीं होगा, आज था ना आज की मुरली में। तो ऐसे ही अपनी एक डॉक्टर है अमेरिका में, काफी समय से वो बाबा की बच्ची हैं, और वो एक बार अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं दांत निकलवाने के लिए हॉस्पिटल में गई, वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा कि मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगी, दांत में इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर दर्द ना हो उसके लिए जैसे एनेस्थीसिया देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक प्रयोग है कि मैं बिल्कुल अशरीरी स्थिति में रहूंगी और डॉक्टर को कहूंगी कि तुम बिना इंजेक्शन दिए मेरा दांत निकालो, देखते हैं मुझे दर्द होता है कि नहीं होता। तो वो सचमुच उसने बिना इंजेक्शन लगाए वो दांत निकलवाया और उनको कोई दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे देह से न्यारी स्थिति में। तो अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन का भी काम करती है, दूसरे शब्दों में ये कहें कि बहुत दर्द हो रहा है आपको, आप कुछ समय के लिए बिल्कुल देह से न्यारे अशरीरी हो जाएंगे तो वो दर्द की फीलिंग बिल्कुल खत्म। अब हम कितना समय रह सकते हैं वो हमारा अभ्यास होता है। तो जितना जितना हम इस विधि पूर्वक मनसा सेवा करेंगे तो फिर हमें मनसा सेवा के भी परिणाम और रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो इस तरह से हम बाबा के बाकी सेवाएं तो हमें चांस मिलता है तब हम करते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन मनसा सेवा के लिए चांस की कोई बात नहीं। ये हमारी अपने कंट्रोल में है कि हम जब चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। उसमें शरीर की बीमारी की भी बात नहीं, अगर तन बीमार है और मन स्वस्थ है तो भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। कई बार कई भाई बहने सोचते हैं कि हमारा तो तन ऐसा है ही नहीं जो हम बाबा की सेवा कर पाए, लेकिन मनसा सेवा सब कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं और उसमें कोई विघ्न भी नहीं आता, कोई दूसरा उसमें विघ्न भी नहीं डाल सकता। अगर मेरा मन शुद्ध निर्मल सच्चा सच्चाई सफाई वाला है तो फिर ये हमारे लिए बहुत सहज है। और इस तरह से ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें तिलक तख्त और ताज के रूप में सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनाया है। ओम शांति।